वो जमाना था कि ऋषियों के आश्रम में, संतों के आश्रम में इतनी सारी संपदा रहती थी कि कभी राज काज कंगाल हो जाता, राजकोष खुट जाता, तो आश्रम से, गुरुकुल से राजकोष को लोन मिलता था। अभी तो ऐसा अभागा जमाना आ गया है, अंधा समाज होता है और अंधी मति का ऑफिसर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सज्जक और हिम्मत वाला समाज होता है और बुद्धिमान ऑफिसर होता है तो गाड़ा फिर से ठीक चलने लग जाता है। जय राम जी की। एकनाथ जी महाराज के जमाने में अंधा इनकम टैक्स आश्रमों पर लागू नहीं था। चांदी के झूले में वो महापुरुष झूलते थे और अढ़लक संपदा थी और ईमानदारी से लोग कमाई का दसवां हिस्सा गुरुद्वार अर्पण करते थे। ऐसा नहीं मेरा तो मेरे छोरों का और गुरु के माल में मेरा हिस्सा, ऐसे बेईमान चेले नहीं थे, तब की बात है। तो एकनाथ जी महाराज भी खुलकर सत्कर्म करते थे, गरीब गुरबे और साधक भक्तों की खूब सेवा होती थी। वो विधवा माई दर्शन करने को आई, सेवाधारियों ने कहा भोजन करके जाना, गुरु की आज्ञा है। जय राम जी की। बाई ने तो भोजन किया, लेकिन बाई के उस पुत्र ने भी तो भोजन किया, उसको तो डांट में ऐसा स्वाद जम गया पूरनपुरी का। दूसरे दिन माँ को बोलता है माला पूरनपुरी पाई जे, बेटा मैं गरीब आए मैं काय करूं, माला पूरनपुरी पाई छी, भोजन नहीं किया, गरीब माँ ने कैसे करके पूरनपुरी बना दिया। तीसरे दिन भी वही हट, अब रोज रोज देसी घी की पूरनपुरी माँ कैसे खिलाए, माँ तंग आ गई, छोरा भूखा रहे तो माँ सूखे टुकड़े कैसे चबाए। माँ दुखी हुई और बेटे को समझाया, लेकिन बेटे ने बाल हट है, राज हट, योग हट, स्त्री हट, बाल हट, इसीलिए योगियों को छेड़ना नहीं चाहिए ज्यादा। जय राम जी की। अगर योगी ने किसी बात की हट पकड़ ली तो फिर नाक में दम कर देते। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां संपदा और अधिकार संत के हाथ में होता है तो बहुजन हिताय काम होता है, और रावण जैसे असंत के हाथ में होता है तो बहुत जन का शोषण होता है। राम के हाथ में अधिकार है, कृष्ण के हाथ में अधिकार और राज्य संपदा है तो पूरा अयोध्या सुख चैन और आनंद का अनुभव करता है। कंस और रावण के हाथ में है तो उसके आदमी भी परेशान है और ऋषि मुनि भी परेशान है, मानव भी परेशान है तो दानव भी परेशान है, क्योंकि अहंकारी और अपराधी निगुरे आदमी के हाथ में सत्ता और सामर्थ्य उसके लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। सगुरु और सदगुरु के प्यारों के हाथ में सत्ता और सामर्थ्य होता है तो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी होता है। पूरनपुरा को उस लड़के को मां छोड़ गई, मां लड़के को छोड़ गई आश्रम में, लड़का पूरनपुरी खाने को आश्रम में रहा और ऐसा पूरनपुरी का शौकीन कि दाल नाई नको, सब्जी पाइजे नको, भात पाइजे नको, माला पूरनपुरी ठेवा। वो रसोया देखे कि रोज रोज पूरनपुरी खाते उबता ही नहीं, रसोया गुस्से गुस्से में उसका नाम ही रख दिया पूरनपुरा। अब उस विधवा माई के बालक का नाम क्या है मैं भी नहीं जानता हूं, उसका नाम इतिहास में पूरनपुरा आ गया। जय राम जी की। हकीकत में पूरनपुरा कोई व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कढ़ंगी आदत से उसने नाम पा लिया पूरनपुरा। लेकिन अपने आत्मकृपा में वो सफल हो गया। एक नाथ जी महाराज जब वृद्ध हुए तो समिति वालों को बुलाया, समय मिले तो एकनाथी भागवत 11वां स्कंद पढ़ लेना, एक नाथ जी महाराज का है, बहुत सुंदर उसकी टीका। वो महापुरुष ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने देखा कि अब शरीर शायद ज्यादा दिन न टिकेगा, समिति वालों को बुलाया कि देखो ये मैं ग्रंथ अगर पूरा न कर सकूं तो पूरनपुरा को बोलना वो बाकी का ग्रंथ पूरा कर देगा। समिति वाले बोलते हैं तुम्हें काय सांगतो गुरुदेवा, असा काय, तुमचा पूरा है, तुम्हारा लड़का है वो काशी से रिटर्न है, काशी उस समय विद्या का गढ़ था, अभी भी संस्कृत का तो गढ़ है, वो शास्त्री पढ़ा है, पंडित है और आपका पुत्र है, बोले वो मेरा पुत्र तो है, मेरे को पिता मानता है, सदगुरु नहीं मानता है। और पूरनपुरा सदगुरु मानकर मेरे सामने एकटक देखता देखता मेरे साथ तदाकार कर चुका है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी असली पढ़ाई पढ़ा है उसने, आत्म कृपा उसने अपने आप के ऊपर की है, तो गुरु कृपा को पचाने में वो सफल हो गया है। ईश्वर कृपा अपने आप इसका सहयोग करेगी और शास्त्र का रहस्य अपने आप खुलेगा। लेकिन समिति के लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कभी कभार बहिर्मुख लोग होते ना समिति के, तो गुरु के संकेत को नहीं समझ पाते। जैसे परसों एक भक्त विश्व वंदनीय, हमारे विश्व भगवान ने विश्व, अरे कुछ बात धड़े की करो बेटा, जयराम जी की। मैं टोकता गया और वो बोलता गया, मैं टोकता गया, मैं बोलता गया, वो बोलता गया, तो अति बहिर्मुखता के कारण कई बार समिति के लोग भी गुरु का संकेत नहीं समझ सकते। ऐसे उनकी समिति के लोगों को भी ये हाल, गुरु जी बोलते हैं पूर्ण पूरा से करवाना, लेकिन वो संकेत नहीं समझ रहे। गुरु जी हरि पंडित से करा दे, आपका पुत्र है, आपका ये है। गुरु ने कहा अच्छा करवा लेना, अगर वो नहीं करे फिर तो पूर्ण पूरा को देना। गुरु जी जब थोड़ा कड़क बोले तो समझ लेना चाहिए कि हमारा कोई दुराग्रह है जो गुरु को अच्छा नहीं लगता है। जो गुरु को अच्छा नहीं लगता वो चेले के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। कबीरा वे नर अंध है, गुरु को कहते और हरि को कहते और, हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मैं गुरु के चरणों में रहता था तब की एक छोटी घटना ने मुझे बहुत लाभ दिया। छोटी सी सेवा ने मुझे इतना फायदा दिया कि अभी तक उस दिन को मैं याद करता हूं और दिल मेरा आनंद से भर जाता है। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कोई समिति वाले लोग आए थे और मैं श्री चरणों में रहता था नैनीताल के जंगलों में। उन लोगों ने इच्छा की कि हम चाइना पीक देखने जाए। नैनीताल की पहाड़ी के पीछे है और आश्रम तो नैनीताल के उधर के दूसरे एंगल में है। दिन भर की पैदल यात्रा थी और वो लोग जरा गुसमुस करके बापू के चरणों में कह रहे थे कि हम आगरा से आए हैं, नैनीताल पहली बार देखा और ये चाइना पीक देखने की इच्छा तो है, लेकिन आश्रम का कोई साधक साथ में चले तो। गुरु जी ने बुलाया आश्रम, जाओ इनको चाइना पीक दिखाओ। हालांकि चाइना पीक का नाम भी मैंने गुरु मुख से ही सुना उस वक्त। मैं क्या जो आ गया दिखा दोगे इनको कि हाँ आप कहते हैं तो मैं दिखा दूंगा। वो तो मशहूर जगह है, उनको लेकर हम चले। जंगल से नैनीताल में पहुंचे, नैनीताल से जो पगडंडी जाती है वहां पकड़ा रास्ता। इतने में मौसम खराब, अब जो लोग सुबह निकले थे ऊपर वे वापस लौट आ रहे थे, ओले पड़ रहे, और मेरे साथ जो बंदे थे कोई डॉक्टर था, कोई समिति का कुछ था, कोई कुछ था, तो अपने को भी कुछ मानते थे। वो मेरे को बोलते यार वापस चल। मैं क्या वापस कैसे चले, उनको पता नहीं कि आश्रम साईं बनने वाले। अरे यार तू वापस चल, तू करके बात करते थे, लेकिन मैं तो गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर चल रहा था। मैं क्या वापस क्यों चले, आप कृपा करिए चार कदम आगे बढ़ाइए। गुरुदेव ने कहा है चाइना पिक दिखा के आओ तो आप देख लेंगे, मौसम ठीक हो जाएगा। बोले यार इतना ओला पड़ रहा है, तुम तो कैसी जिद करते हो, चलो चलो। सब बंदे एक तरफ और ये दास एक तरफ, कैसे भी करके हाथा जोड़ी करके उनको पटा पुटा के चार कदम चलूं तो खच्चर वाले वापस उतर रहे हैं, पैदल वाले वापस उतर रहे हैं। देख यार ये सब वापस आ रहे हैं। मैं क्या वो आ रहे हैं तो आ रहे, अपने को तो जाना है। हिम्मत हिम्मत देते गए, आखिर जहां चाइना पीक की पॉइंट थी वहां पहुंचे तो मौसम साफ और वहां से बद्रीनाथ के दर्शन हो सकते थे। वो ऐसी पॉइंट थी, कहां नैनीताल और कहां बद्री केदार का पहाड़, तो वहां दूरबीन रखी थी और वहां उसमें चवन्नी देकर उन्होंने देखा और वो बड़े खुश हो गए। हम मेरे सराहना करने लगे। मैं क्या अच्छा देख लिया चाइना पिक, अपनी गुरु की आज्ञा पूरी हो गई। मैं तो अंदर अंदर चुप से खुश हुआ। वो बंदे लौटे, पहाड़ी पे चढ़ते समय मोटे मोटे आदमी धीरे धीरे चलते, और ढलान के समय चतुराई मारते हुए सब जल्दी जल्दी आगे गए, और हम अपनी रिधम से। जब गुरु के चरणों में पहुंचे तब सूरज ढल चुका था, सूर्योदय के पहले निकले थे और सूर्यास्त के बाद पहुंचे। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम देख कर आए? बोले हाँ। तो मौसम तो खराब हो गया? कि साई मौसम तो खराब हो गया, लेकिन वो तुम्हारा जो साधक था ना आशारा, तो भा साई तो भा, ऐसा वैसा रो युक्ति मुक्ति से पटा पुटा के हमको आखिर वहां ले गया। और बाबा हम वहां गए ना तो मौसम खुल गया, मौसम साफ हो गया। बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी आज्ञा मौसम भी मानेगा और बादल भी मानेंगे। तब से लगा कि उनको तो चाइना पीक देखने को मिला और मुझे तो गुरु कृपा का अनुभव होने लगा। जय राम जी। वे लोग मूर्ख हैं जो गुरु के साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। इतना पैसा दे दो हम ढोलक बजा के छुट्टी। अरे मूर्ख तू कुछ नहीं कमाया, रोज के 200 रुपया दे दो, ले जा 200 रुपया। कैसियो बजाने के रोज के 400 दे दो, ले जाओ। लेकिन हम न जाने क्या देना चाहते और तुम कितना लेकर खुश होते हो। बुद्धि काम नहीं दे रही। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण। पैसा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजरों में नौकर है, लेकिन कृपा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजर में साधक और साध्य के साथ मुलाकात करने का अधिकारी होता है। मैं साधक को डांट सकता हूँ लेकिन नौकर को नहीं डांटता हूँ। नौकर का पगार कट करवा सकता हूँ लेकिन डांटने का अधिकार अपना नहीं मानता हूँ। जयराम जी। कल इन लोगों को कहा ठीक से बजाओ नहीं तो पैसे कट जाएंगे। जयराम जी। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। तो आत्म कृपा, अपने आप ऊपर कृपा करे कि हम कैसा व्यवहार करें गुरु के साथ, इसका नाम है आत्म कृपा। ये आत्म कृपा करेंगे तो गुरु कृपा बचेगी, और गुरु कृपा बची तो शास्त्र का रहस्य खुलेगा, और ईश्वर की कृपा तो अनावृत है ही है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने आप ऊपर कृपा करते कि नहीं करते, आत्म कृपा करते हैं कि नहीं करते। उस पूरन पूरे ने आत्म कृपा की। एकनाथ जी महाराज का बेटा, उसने अपने आप ऊपर कृपा नहीं की। उस मूर्ख ने शास्त्र तो पढ़े लेकिन गुरु कृपा कैसे पाई जाए, वो पिता की नजर से ही गुरु को तोलता रहा। कभी रूठ जाए, कभी काशी जाकर रहे, कभी कुछ, कभी बोले आप ये ठीक नहीं करते, पिताजी आसन को करा। अरे मूर्ख पुत्र तेरे को काय पता। उस शास्त्री पढ़े हुए श्रद्धाहीन को शास्त्र दिया गया पूरा करने के लिए, उससे पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से अपना दिल नेछावर कर चुका था, अनपढ़ विधवा माई का पुत्र, पूरन पूरा कढ़ंगी आदत से अपना असली नाम भी खो चुका, लेकिन एक सढ़ंगी आदत थी कि बस गुरु को देखते, गुरु मूर्ति को देखते 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 बस तू ही गुरुदेव माजा है, तू ही माजा विठल आहे, तू ही माजा रामा है, तू ही माजा श्यामा आहे, तू ही माजा नाथ आहे, हे नाथ तू ही माजा स्वामी आहे नाथ आहे। ऐसा करते करते पूरन पूरा ऐसा गुरुमय हो गया कि वो पंडित शास्त्री पढ़ा हुआ जो ग्रंथ पूरा करने में असफल गया, वही ग्रंथ पूरन पूरा को दिया गया, और पूरन पूरा गुरु की तादात में करते हुए और जो ग्रंथ लिखना चाहता त्यों ही वह सरस्वती उसके हाथों के द्वारा गुरु कृपा का परिचय देते हुए ग्रंथ को पूरन पूरा ने पूरा कर दिया। ऐसा ही शंकराचार्य के चार शिष्यों में एक ऐसा अनूठा शिष्य था, परम भाग्यशाली, जिसका नाम था तोटक। ऐ तोटक इधर, ऐ तोटक ये करो, ऐ तोटक ये करो। तीन बड़े विद्वान थे, मंडन मिश्र पंडित में से शास्त्रार्थ करते करते, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते करते परास्तु और तब शिष्य बने, कितने दबंग होंगे। वो उनके घर में तो तोते मैना भी वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे, वो इतना गड़ंग पंडित था मंडन मिश्र। सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, ये तीन शिष्य, और चौथे हो गए तोटकाचार्य। तो तोटकाचार्य आचार्य नहीं थे, तोटक था वो। तीन शिष्य तो विद्वान धुरंधर पंडित, और चौथा था बुद्धू सिंह। सुन दे सी तू सी ओ सिंह, चौथा था बुद्धू सिंह। ओ बोले मैंने बाबा दी सेवा गड़ी है, ओ बहुत हो गया, मैंने तो बाबे गुरु दी सेवा है बस। ओ गुरु दी सेवा में लगा रहा बंदा, पाठ के समय आ जाता था। एक दिन वो गुरुजी के बर्तन मांजने में लगा था, तो तीन चेले आ गए, गुरुजी पाठ शुरू करो समय हो गया। गुरुजी बोले वो आ जाए चौथा। बोले गुरुजी वो तो बुद्धू है, बुद्धू सिंह है, वो तो इन्नु की पता है। बोले ये बुद्धू, गुरु की सेवा करने वाला बुद्धू रह सकता है? शबरी राम की गुरु की सेवा करी और शबरी बुद्धू थी क्या? बेटा तोटक, ये जो लोग पढ़ेंगे वो तू जरा बोलते आना, जो इनको याद है वो भी गुनगुनाता, और जो ये याद करने वाले हैं वो भी तू उच्चारता, आ जा बेटा। तो टक के हाथ में तो गुरु के बर्तन मांजने की राख थी, लेकिन जीवा पर तो सरस्वती ने प्रवेश कर लिया। तो टक कहता है, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरत आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। हम प्रातः काल उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं जो जाग्रत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, और तीनों अवस्थाएं बदलने पर भी जो है, और जो निष्कलंक है उस ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, वह ब्रह्म बन गया है। तीन शिष्यों को तो मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन वो चौथे शिष्य को तो मैं प्रणाम करता हूं, धन्य है तेरी गुरु भक्ति को। विवेकानंद में विद्वता थी, दर्शन शास्त्र में गति थी, लेकिन जब रामकृष्ण मिले, रामकृष्ण देव के लिए गुरु भक्ति जभी, तभी नरेंद्र में से विदिशानंद बने, और विदिशानंद में से विवेकानंद प्रकट हुए, गुरु भक्ति का प्रभाव। एक बार रामकृष्ण परमहंस बीमार हालत में पड़े थे, कैंसर की तकलीफ थी, गले में बड़ी तकलीफ थी, खांसते खांसते वो थूकदानी में थूक डालते थे। उनकी सेवा में रहा हुआ कोई मूर्ख शिष्य सूग चढ़ाते चढ़ाते सेवा करता था, और विदिशानंद आए और देखा कि गुरु की सेवा करने में इसको जरा कहरत आ रही, क्योंकि वो रक्त और थूक से मिला हुआ उनका थूक दानी में थूक फेंकते तो जरा ऐसा तो नाक सकोड़ के सेवा करता। विदिशानंद ने उसको डांटा कि मूर्ख गुरु का तो हृदय चिन्मय होता है, उनके रक्त का कण कण चिन्मय होता है, उनकी निगाहों से वह ब्रह्म रस टपकता है, और ऐसे ब्रह्मवेता की सेवा में तू सुग करता है, ये अशुद्ध मानता है। उसको डांटते हुए विदिशानंद भाव से में भर गए, और उतावल में आकर वो जो थूक दानी में गुरु की ये थूक और ये पड़ा था वो अमृत समझकर पी गए। आप लोग ऐसा करें, ये मेरा कहने का आशय नहीं है, लेकिन विदिशानंद जानते थे कि वो चिन्मय चैतन्य जिनके हृदय में है वे महापुरुष कितने उत्तम और उन्नत होते। ऐसी एक घटना समर्थ रामदास के शिष्यों के साथ भी घटी। कल्याण नाम का शिष्य गुरु की कृपा को इतना झेल चुका क्योंकि अपने आप ऊपर उसने कृपा की थी, तो उस पर गुरु की थोड़ी विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। शिवाजी पर गुरु की विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी, तो शिवाजी का भी मनोबल गुरुजी ने दिखाने के लिए एक दिन लीला की। गुरुजी ने आ आ, 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 सच्ची पीड़ा से भी पीड़ा का नाटक खतरनाक पैदा किया जा सकता है, सच्चे रुदन से भी रुदन का नाटक दर्शकों को रुला देता है। जब स्टेज पर कोई नाटक करता है रुदन का पीड़ा का, तो दर्शकों की आंखें गीली हो जाती है और उस पट्टे को भीतर कुछ भी नहीं होता। तो गुरु ने नाटक किया, शिष्य विवल हो गए, गुरुजी क्या पीड़ा है, मत पूछो मत पूछो। गुरु ने लीला की, गुरु की पीड़ा देखकर शिष्य का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। गुरुजी पीड़ा कैसे मिटे, हुक्म कीजिए। गुरु ने कहा, पीड़ा मिटने का कोई साधन नहीं दिखता, केवल एक उपाय है, एक एक बस एक। गुरुजी बताइए हम करेंगे। बोले शेरनी का दूध ताजा दोया हुआ, अगर नाभि पर कोई मल दे तो ठीक हो सकता, नहीं तो प्राण खतरे में। शेरनी का दूध अपने कहा ला सकते हैं, अपने तो सीताराम सीताराम करो, भगवान गुरु को ठीक कर दे। सब खिसकने लग गए। इतने में शिव आया, क्या बात है, गुरु जी को पीड़ा है और शेरनी का दूध, भला शेरनी का दूध कौन दो सकता है, मौत के मुंह में जाना है शेरनी का दूध। शिवा ये तो मौत अपने को मारने की बात है। शिवा का मूर्ख, तुम ऐसे यहां बैठे हो, लाओ बर्तन लाओ। शिवा भगा और गुरु की कृपा कहो, प्रकृति की लीला को धम धड़ार, बादल गरज रहे, फट रहा है आकाश, चमक रही है बिजली, जंगल के पशु जंगली जीव भी जंगल के आंधी तूफान से घबराए हुए। ऐसे में शिवा ढूंढता है कहां रहती शेरनी, और उस अंधेरे वातावरण में शेरनी की आंखें चमकी और वहां वो वीर शिवा गया है गुरु की सेवा का, बाना पहनकर अपने दिल को कवच से सुरक्षित रखकर। उस दिल पर सद्गुरु की सेवा के लिए शिवा ने कदम बढ़ाए। जंगल में आंधी तूफान बरसात बिजली चमक रही, दो बच्चों को लेकर शेरनी भी अपने ही गुफा में मानो भयभीत भूखी। और शेरनी दे देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, शेरनी को लगा घर बैठे मेरा शिकार शिवा गया है। पशु में भी भावना झेलने की मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा व्यवस्था होती है। हाथी शेर आपके भाव को जल्दी समझ सकते हैं राजकारणी की अपेक्षा। राजकारणी और पुजारियों का हृदय बड़ा अटपटा होता है, जल्दी से किसी के हृदय को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप दूसरों को उल्लू बनाने की आदत उनके अंतःकरण को मलिन कर चुकी होती है। लेकिन पशु तो दूसरों को उल्लू नहीं बनाता, केवल अपना पेट भरता है, संग्रह नहीं करता है। इसलिए पशु का अंतःकरण कभी कभी भाव को समझने में मनुष्य से ज्यादा सफल साबित हुआ है। शेरनी ने धाड़ा, शिवा कहता है, मां हे वन रानी, तू मुझे जरूर भोजन करके भूख मिटाना, लेकिन एक बार मेरे गुरुजी की सेवा के लिए तू मुझे दूध दोने दे दे, तेरे बच्चों का आहार थोड़ा सा छीनने दे दे, मुझे अपने लिए नहीं मेरे गुरु के लिए चाहिए हे वन रानी। वो भूखी शेरनी मानो पाली हुई बकरी, अरे बकरी भी पैर हाथ हिलाती, बकरी भी अपने सींग दिखाती, वो शेरनी मानो एक कागज की लिखी हुई पुतली ना हो अथवा शिला की बनी हुई शेरनी ना हो, वो खड़ी रह गई और शिवाजी ने अपने सद्गुरु के लिए शेरनी दोई है। कैसा वीर भक्त होगा शिवा, कितनी गुरु में निष्ठा होगी शिवा की। बिन कमाई नानका मुख्य साधन जेड़ो कर, बिना कमाई के सद्गुरु मुखे मेरे को साधु जैसा सामर्थ्य दे दे। अरे आत्म कृपा तो करो, अपने आप ऊपर तो कृपा करो। शेरनी दोई है और दूध लाया है। अब चेले देखते रह गए, शिवा शेरनी दो क्या है, शिवा तुमको मरने का डर नहीं लगा? के हे मूर्खो, हजारों बार मर गए, एक बार गुरु के नाम पर मर भी गए तो घाटा क्या था, और मारने वाले से बचाने वाला गुरु तत्व सर्वत्र होता है।
समर्थ ने कहलाओ शेरनी का दूध। पेट में दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी। इन लोगों की पीड़ा मिटाने के लिए मैंने पीड़ा का नाटक किया कि शिवा पर ज्यादा मेहरबान है, तो शिवा की अपने आप ऊपर कृपा भी तो पूरी है, तो गुरु की कृपा भी पूरी ले रहा है। और तुम लोगों की अपने आप ऊपर 2% कृपा है, तो गुरु की कृपा भी 2% तुम हजम कर रहे हो। मेरी कृपा तो जैसे सूर्य के किरण सब पर बरसते हैं, और जो जितना खेड़े जैसा खेत, ऐसी गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। किसी को ऊंचा उन्नत देखकर जलने की जरूरत नहीं है, अपने को योग्य बनाने की कोशिश करो मूर्खो। ऐसा एक आध्यात्मिक शिष्य था, उस पर देखकर भी शिष्यों के हृदय में गड़बड़ होती थी। समर्थ ने एक दूसरी लीला की। एक आपूस आम जो पकने वाला है उसको अपनी जांग पर बांध दिया, पट्टा पुट्टी कर दिया, और फिर धीरे से कहने लगे कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, गुमड़ा बढ़ रहा है, कहराने लगे। गुरुजी क्या उपाय है, इसका ऑपरेशन कराए? बोले नहीं, बढ़ जाएगा। गुरुजी कुछ इलाज? बोले एक ही इलाज है कि इसको कोई चूस ले, इस गुमड़े को, इस मवाद को कोई चूस ले। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कल्याण लपका, चिपक गया उस जो बंधे था आम, गुमड़ा, गुमड़ा समझते ना, फोड़ा, फोड़ा, फोड़े जैसा बांधा था झांग पर, कल्याण चिपक गया उस फोड़े को चूसने में। अब फोड़ा तो था नहीं, था तो आम का रस, चुसते चुसते तो खुशियां मनाने लगा, और गुरु जी मुस्कुराने लगे, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसने और दबा दबा के चूसा, वो समझ गया क्या है। चूसने के बाद उसे स्वाद आया, ये तो आम है। चेले देख रहे हैं कि गुरु का फोड़ा चूस रहा है, कैसा गंदा, कैसा बेगुफ, अशुद्ध, अपवित्र, अच्छी। लेकिन वो बोलता है गुरु जी और थोड़ा। बोले बेटा ठीक हो गया? बोले गुरु जी और थोड़ा। और दबाया तो गुटली बाहर निकल आई। सारे चेले नहीं कसा मुंह लेकर देखते रह गए, और कल्याण, तेरा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे में और इसमें ये फर्क है, इसने अपने आप पर पूरी कृपा की है। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु को समर्पण इसने पूरा किया है, इसलिए गुरु कृपा इसके द्वारा पूरी चमकती। एक बार गुरुदेव के साथ कल्याण अंगत सेवा में जाता था, जो गुरु के अनुकूल होगा, गुरु को समझेगा, उसी को तो रखेंगे। सेठ नौकर तो वही रखता है जो काम में आए, जो सिर खपाए, खून पिए या पैसा लेके भाग जाए, उसको थोड़ी पर्सनल सेवा में रखा जाएगा। तो सेठ भी मुनीम को, ईमानदार मुनीम को रखता है, ऐसे गुरु भी ईमानदार गुरु भक्त को ही सेवा में रखेगा, ले भागु को थोड़े रखेगा। जयराम जी की तो महाराज उसको सेवा में रखा, और गुरु की निकट की सेवा, गुरु के निकट बैठना, ये कोई अभागे आदमी का तो काम भी नहीं। कुछ न कुछ भाग्य होगा तभी तो गुरु के निकट बैठ सकेगा। और निकट की सेवा मिली, उस कल्याण को गुरु ले गए यात्रा करने को। कल्याण ने कुछ वड़े बना लिए, रास्ते में भूख लगेगी, सूखा भोजन। यात्रा करते करते गुरु ने, एक सुबह का समय था, उस गांव से विदाई लेकर एक दो मील यात्रा की, फिर बैठे पेड़ के नीचे। बोले कल्याण भूख लगी, गुरु जी ये वड़े हैं, वड़े? बोले वड़े हैं, सूखे सूखे वड़े, आप दही तो नहीं, दूध के साथ भी भिगो के खा लेते तो सुबह नाश्ता हो जाता। तो ऐसा नहीं बोलता कि गुरु जी गांव था उधर, बोले नहीं और अभी बोल रहे हो। बोले गुरु जी दूध ले आओ। बोले अभी दूध लोगों ने तो दो लिया होगा, दही जमा दिया होगा, मिलेगा कि नहीं? अरे सब मिल जाएगा गुरु जी, मिल जाएगा। वो लोटा लेकर कल्याण चला है, और वहां गांव में एक गाय जो दोने की बाकी रह गई, लंगड़ी गाय, वो माई जरा स्वभाव की जरा विचित्र थी, उसका पति मर गया, वो लंगड़ी गाय जरा ऐसे ही कूदती थी, तो माई ने मारा डंडा, तो गाय ने और जोर किया तो गाय का फंदा टूट गया, और गाय भागी लंगड़ी, उसके पीछे माई डंडा लेकर भागी। मानो भागती भागती गाय उस डायरेक्शन में आ रही जिस डायरेक्शन से वो गुरु का शिष्य आ रहा है। गाय थकी और एक छोटा मोटा खड्डा था वहां दबाग से बैठ गई। माई रोने लगी डंडा लेकर कि पति तो चले गए और ये लंगड़ी रांडने में मेरे को सताया, पाव भर दूध देती है लेकिन जेर भर खून पीती है, मैं क्या करूं। और रांड इधर आ गई, वो माई रो रही है सियापा मार के। इतने में कल्याण ने देखा कि हाश गाय भी है और गाय वाली माई भी है। वो कल्याण बोलता है, माता जी मुझे एक लोटा दूध दोने को दे देगी। वो इतना बड़ा लोटा देकर माई बोलती कि ले तेरी माँ दोने को देगी, ले ले दो, पाव भर तो ये बाखड़ी है, पाव भर तो दूध नहीं देती। और आज मार मार के दूध ले रही थी तो वो भागी है और तू एक लोटा भर के दूध मांगता है, शर्म नहीं आती? ले आ थारी माँ है, दो ही ले तू। माई को तो गुस्सा और गुस्सा हंसी में बदल गया, ये तेरी माँ ले, दोने को देती तो दो ले तेरी माँ। कल्याण कहता है कि हे कल्याणी माता, मेरे गुरुदेव की सेवा में मुझे तू सफलता दे, उठ खड़े हो और एक लोटा भर के दूध दे देना। वो माई देख रही है छोरो पागल है, डेढ़ सेर को लोटो भर के दूध लेगा इसकी माँ से, पाव भर तो देती नहीं बाखड़ी रांड, और मेरा सेर भर खून पीती है और उसका बछड़ा भी नहीं है और दूध दे, ले 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 तेरी माँ से। कल्याण ने पुचकारा, वो माँ खड़ी हो गई, न रस्सी पैरों को बांधी है, न बछड़ा दिलवाया है, न तगारे में खुराक रखा है, लेकिन गुरु कृपा का खुराक को याद करके हाथ घुमा दिया और लपक 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 चैं सुं सैं सुं सैं 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 चैं, लोटा भरा लोटा उभरा, उसकी झाग उतार के फिर दें धुम सैं सुं। वो माई की आंखें फटी सी रह गई, ये क्या है, तू कौन मंत्र जाने, मने सुनाई जा, मैं भी ये रांड को दोया करूं। बोले तू नहीं जानती, मैं ही जानता हूं, जय जय सीताराम, माता जी आओ, ये गुरु कृपा का मंत्र है। और कल्याण भरा हुआ ताजा ताजा दूध, बोले गांव में गया और आया कैसे, योग सिद्धि तो तेरे पास नहीं? बोले योग सिद्धि तो नहीं, मेरे गुरु कृपा सिद्धि रखता हूँ गुरु जी, मैं इधर से गया और गाय भक्ति भक्ति मेरे सामने आई, रास्ता भी तय हो गया और काम भी हो गया। नारायण नारायण नारायण, आत्म कृपा गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा पचती तो शास्त्र का रहस्य समझ में आने लगेगा। योग वशिष्ठ उपनिषद तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में आने लगेगा तो समझो गुरु कृपा उतर रही। शास्त्र कृपा उतरी तो ईश्वर कृपा तो प्रत्यक्ष हो जाती है। तो आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ईश कृपा। तो बोले महाराज ईश्वर कृपा कैसे मिले? कोई न कोई सत्कर्म करते तो ईश्वर कृपा, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा खुश होता है, तब तुम्हें गुरु के द्वार जाने की रुचि होती है। माता की पिता की सज्जनों की किसी की तुमने ऐसी कोई सेवा किया है, अगले जन्म या इस जन्म में कोई ऐसा सत्कर्म किया है जो तुम सतगुरु का दर्शन कर पाते हो, ये ईश्वर कृपा का ही तो फल है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावहिं वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावहिं वेद पुराण, जानन को साधक की कोठी, सत्तर दिन तक हुई कसौटी, कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मन बुलवाया, कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ज्ञान भजन घर पर ही करना, आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी पूरन धाये, नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज आप
तरसाए प्रेमशील स्वामी पहनाए दत्त कुटीर में सागर लाए सुमरा प्रभु प्रेम का चस्का अनुष्ठान चालीस दिवस का मरे चतु स्थिति पाई ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई शुभाशुभ समरो ना गाना कृष्ण ठंड मानो रघुमाना तृप्त हो खाना भूख प्यास महल अवुटिया आस निहार भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी हुए समान मग हरि प्रकाश हरि ओम 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 हरि स्वर्ण काष्ठ पाषाण सचित आनंद रूप है व्यापक है भगवान सचित आनंद रूप है व्यापक है भगवान ब्रह्मेशान जनार्दन सारद शेष गणेश गुरुवर सारद शेष गणेश निराकार साकार है हर सर्वत्र महेश निराकार साकार है हर सर्वत्र महेश आसुमज ब्रह्माभ्यासी जन्म अनेको लागे बासी दूर हो गई आधी जाती सिद्ध हो गई सहज समाधि एक रस नदी तट मन आकर्षा आई जोर से आधी वर्षा बंद मकान बरामदा खाली बैठे वही समाधि लगाली देखा किसी ने सोचा डाकू लाए लाठी भाला चाकू दौड़े चीखे शोर मच गया तुम्हें समाधि ज्ञान खिंच गया साधक उठाते बिखरे के राग द्वेष ना किंचित लेशा सरल लोगों ने साधु माना हत्यारों ने काल ही जाना भैरव देख दुष्ट घबराए पहलवान जो मल्ल ही पाए स्वामी जनों ने